एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं, ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ग्रंथसार में स्वागत है। आज हम एक ऐसे उपन्यास की दुनिया में गोता लगा रहे हैं जिसकी शुरुआती पंक्ति शायद दुनिया की सबसे जानी मानी पंक्तियों में से एक है। हम बात कर रहे हैं जेन ऑस्टिन के प्राइड एंड प्रेजुडिस की।
हाँ बिल्कुल, जेन ऑस्टिन जो 18वीं सदी के आखिर और 19वीं की शुरुआत में लिख रही थी, वो रीजेंसी पीरियड था इंग्लैंड का। समाज बदल रहा था, जमींदार वर्ग और नया औद्योगिक वर्ग, एक तरह की कश्मकश चल रही थी।
और ऑस्टिन ने इसी माहौल में बड़ी बारीकी से उस वक्त के समाज को देखा, खासकर उच्च मध्यम वर्ग, उनके रहन सहन और शादी को लेकर उनकी जो सोच थी उस पर गजब का व्यंग्य किया है।
सही कहा, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस दौर का एक आईना है। औरतों की स्थिति देखिए, आर्थिक आजादी तो थी नहीं, उनके लिए तो एक अच्छा रिश्ता, मतलब अमीर घर में शादी, वही सामाजिक सुरक्षा थी, वही सम्मान था।
तो आज हम इसी कमाल की रचना की परतें खोलेंगे, इसकी कहानी, इसके यादगार किरदार एलिजाबेथ बेनेट और मिस्टर डार्सी।
हाँ,
उनका वो उलझा हुआ रिश्ता।
हाँ, और जो मुख्य विषय है, गर्व, पूर्वाग्रह, प्रेम, शादी, समाज, वर्ग, इन सब पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे।
और शुरुआत तो वहीं से करनी होगी, उस मशहूर लाइन से।
हाँ, वो व्यंग से भरी पंक्ति, ये एक सार्वभौमिक सत्य है कि कोई अकेला पुरुष जिसके पास अच्छी संपत्ति हो, उसे पत्नी की तलाश अवश्य होगी।
हाँ।
ये लाइन पढ़ते ही समझ आ जाता है कि हम किस तरह के समाज में कदम रख रहे हैं,
हाँ।
जहां शादी एक सामाजिक और शायद आर्थिक सौदा ज्यादा लगता है।
बिल्कुल, कहानी हमें ले जाती है हर्टफोर्डशायर, एक गांव का माहौल है, लॉन्गबोरन एस्टेट, वहां रहता है बेनेट परिवार।
मिस्टर बेनेट,
वो तो अपनी किताबों में ही मस्त रहते हैं, थोड़े उदासीन से पिता कह सकते
और
हैं।
मिसेस बेनेट, उनकी जिंदगी का तो बस एक ही मकसद है, अपनी 5 बेटियों की शादी करवाना, और वो भी किसी अमीर लड़के से।
5 बेटियां और हरेक का अपना अलग मिजाज। सबसे बड़ी जेन बहुत सुंदर, शांत स्वभाव की।
फिर आती है हमारी हीरोइन एलिजाबेथ, लिजी, तेज, हाजिर जवाब और अपनी सोच रखने वाली।
उसके बाद मैरी, जो थोड़ी ज्यादा पढ़ती हैं, किताबी हैं, और फिर किटी और लिडिया, सबसे छोटी, वो थोड़ी चंचल हैं, थोड़ी नासमझ।
इस आम से दिखने वाले परिवार की जिंदगी में हलचल तब मचती है जब पास की एक बड़ी एस्टेट नेदरफील्ड पार्क में एक अमीर नौजवान रहने आता है, मिस्टर चार्ल्स बिंगले, बहुत मिलनसार।
और अकेले नहीं आते, उनके साथ आते हैं उनके दोस्त मिस्टर फिट्ज़विलियम डार्सी, बिंगले से भी ज्यादा अमीर, लेकिन उतने ही मगरूर और चुप रहने वाले।
और बस यहीं से कहानी का जो मेन टकराव है वो शुरू होता है, एलिजाबेथ की वो आजाद सोच और डार्सी का वो सामाजिक अहंकार आमने सामने।
इनकी पहली मुलाकात होती है एक डांस पार्टी में, मैरिटन बॉल। वहां बिंगले तो जेन को देखते ही पसंद करने लगते हैं।
हाँ, वो तो जेन की सादगी पर फिदा हो जाते हैं, लेकिन डार्सी, वो तो जैसे सबको अपने से कम समझ रहे होते हैं, ज्यादा मिलते जुलते नहीं।
और जब बिंगले उन्हें एलिजाबेथ के साथ डांस करने को कहते हैं तो डार्सी कुछ ऐसा कह देते हैं जो एलिजाबेथ सुन लेती है।
हाँ, वो कहते हैं, शी इज टॉलरेबल बट नॉट हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट मी, मतलब हाँ ठीक ठाक है पर इतनी सुंदर नहीं कि मेरा मन करे इसके साथ डांस करने का।
बस ये बात एलिजाबेथ के दिल में लग जाती है, और यहीं से डार्सी के लिए इसके मन में गहरा पूर्वाग्रह, एक प्रेजुडिस बैठ जाता है। उसे लगता है ये आदमी हद से ज्यादा घमंडी है।
और यहीं उपन्यास का वो बड़ा सवाल उठता है, क्या पहली मुलाकात की कड़वाहट, ये गहरे पूर्वाग्रह, क्या इनके पार जाकर भी प्यार हो सकता है? क्या दो इतने अलग लोग अपनी इतनी बड़ी कमियों के साथ बदल सकते हैं?
एलिजाबेथ का किरदार है भी बड़ा मजेदार। वो वाकई अपने समय से आगे की सोच रखती है, इंटेलिजेंट है, आजाद ख्याल है, समाज के दिखावे पर सवाल उठाती है।
लेकिन उसकी यही तेजी, मतलब तुरंत किसी के बारे में राय बना लेना, यही उसकी कमजोरी भी है। वो पहली छाप पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लेती है, और डार्सी के मामले में तो ये सीधा सीधा पूर्वाग्रह बन जाता है।
और ये पूर्वाग्रह तब और पक्का हो जाता है जब कहानी में एक और साहब की एंट्री होती है, मिस्टर विकम।
ओहो, विकम, बड़ा आकर्षक, मिलनसार फौजी अफसर, एकदम डार्सी के उलट।
हाँ, और वो एलिजाबेथ को अपनी एक दुख भरी कहानी सुनाता है कि कैसे डार्सी ने उसके साथ बहुत बुरा किया है, उसका हक छीना है।
और एलिजाबेथ, वो आसानी से उसकी बातों में आ जाती है। क्यों? क्योंकि विकम जो कह रहा है वो डार्सी की उस घमंडी छवि से मेल खाता है जो एलिजाबेथ के मन में पहले से बनी हुई है। यही ऑस्टिन दिखाती हैं कि बाहरी आकर्षण कितना धोखा दे सकता है।
बिल्कुल। फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। एलिजाबेथ अपनी दोस्त शार्लेट से मिलने हंसफोर्ड जाती है, जहां मिस्टर कॉलिंस पादरी हैं, और वहां डार्सी भी आता है क्योंकि लेडी कैथरीन डीबर्ग उसकी चाची हैं।
और वहीं अचानक डार्सी एलिजाबेथ को शादी के लिए प्रपोज कर देता है।
लेकिन कैसे प्रपोज करता है? मतलब प्यार का इजहार कम, और ये ज्यादा जताता है कि देखो तुम्हारे परिवार का स्टेटस कम है, तुम्हारे रिश्तेदार ठीक नहीं है, फिर भी मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ।
जाहिर है एलिजाबेथ भड़क जाती है। वो गुस्से में ना सिर्फ उसका प्रस्ताव ठुकराती है बल्कि उस पर इल्जाम भी लगाती है कि तुमने जेन और बिंगले को अलग किया और तुमने विकम के साथ नाइंसाफी की है।
ये इनकार डार्सी को हिला देता है, लेकिन इसके बाद वो जो करता है वो कहानी का रुख ही बदल देता है।
हाँ, वो एलिजाबेथ को एक लंबा खत लिखता है और उस खत में वो सारी बातें साफ करता है। बताता है कि जेन और बिंगले को अलग करने की कोशिश क्यों की और विकम का असली चेहरा क्या है।
वो बताता है कि विकम कितना कर्जदार है, कैसे उसने डार्सी की छोटी बहन जॉर्जियाना, जो सिर्फ 15 साल की थी, उसे बहकाने की कोशिश की थी पैसों के लिए।
ये खत एलिजाबेथ के लिए एक आईने जैसा होता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि वो कितनी अंधी, पक्षपाती, पूर्वाग्रही रही है। उसे शर्मिंदगी महसूस होती है।
वो एक जगह सोचती भी है, टिल दिस मोमेंट आई नेवर न्यू माइसेल्फ, इस पल तक तो मैं खुद को जानती ही नहीं थी। ये उसकी आत्म पहचान की शुरुआत है।
और ये सफर और आगे बढ़ता है जब वो कुछ समय बाद अपने अंकल आंटी के साथ घूमने निकलती है और इत्तेफाक से पेम्बरली पहुंच जाती है।
पेम्बरली जो डार्सी की शानदार एस्टेट है, वहां की खूबसूरती, उसका रख रखाव, और सबसे ज्यादा वहां के नौकर चाकर डार्सी की कितनी इज्जत करते हैं, कितनी तारीफ करते हैं, ये देखकर एलिजाबेथ हैरान रह जाती है।
हाँ, ये वो डार्सी नहीं लगता जिसे वो जानती थी। और फिर अचानक डार्सी खुद वहां आ जाता है। वो जल्दी लौट आया था।
और इस बार डार्सी का व्यवहार एकदम अलग होता है, बहुत नर्म, बहुत सम्मानजनक, बहुत मेहमान नवाज। एलिजाबेथ का नजरिया अब तेजी से बदल रहा है। वो जो पूर्वाग्रह की दीवार थी वो धीरे धीरे ढह रही है।
अब जरा डार्सी की तरफ से भी देखें। हाँ, शुरू में वो अभिमानी लगता है, अपनी सामाजिक हैसियत को लेकर बहुत सचेत है, लेकिन उसका गर्व सिर्फ खाली अहंकार नहीं है, उसमें एक तरह की जिम्मेदारी का भाव भी है, और शायद वो थोड़ा सोशल स्किल्स में कच्चा भी है।
एलिजाबेथ के लिए उसका आकर्षण, जो उसके अपने मानकों के हिसाब से एक गलत या नीचा रिश्ता था, वो उसके पूरे सोचने के तरीके को चुनौती देता है।
उसका पहला प्रस्ताव, जैसा हमने कहा, वो तो खराब था ही। हाँ, उसने ये जरूर कहा, व्यर्थ ही मैंने संघर्ष किया है, मेरी भावनाएं दब नहीं सकती। In vain I have struggled, my feelings will not be repressed.
लेकिन उसका अंदाज ऐसा था कि प्यार कम, एहसान ज्यादा लग रहा था। एलिजाबेथ का वो तीखा इंकार उसे सच में सोचने पर मजबूर करता है।
और वो बदलता है। वो ये समझता है कि असली इज्जत सिर्फ खानदान या पैसे से नहीं मिलती, वो आपके बर्ताव से, आपके काम से मिलती है।
इसका सबसे बड़ा सबूत तब मिलता है जब बेनेट परिवार पर एक बड़ी मुसीबत आती है।
उस जमाने में ये बहुत बड़ा स्कैंडल था।
ऐसे में डार्सी चुपचाप, किसी को बिना बताए, आगे आता है। वो अपने पैसे से विकम को ढूंढता है, उसका सारा कर्जा चुकाता है, और उसे लिडिया से शादी करने के लिए राजी करता है ताकि बेनेट परिवार की इज्जत बच जाए।
और ये सब वो सिर्फ और सिर्फ एलिजाबेथ के लिए करता है। वो कोई क्रेडिट भी नहीं लेना चाहता।
जब एलिजाबेथ को बाद में इस बारे में पता चलता है, लिडिया की आंटी बातों बातों में बता देती हैं, तो डार्सी के लिए उसके मन में जो सम्मान है और शायद प्यार भी, वो बहुत बढ़ जाता है।
इसीलिए जब डार्सी दोबारा उसे प्रपोज करता है तो वो पहले वाले से बिल्कुल अलग होता है। इस बार उसमें विनम्रता है, अपनी गलतियों का एहसास है। वो कहता है, आपने मुझे दिखाया है कि एक योग्य महिला को खुश करने के मेरे सारे दावे कितने खोखले थे।
यू हैव शोन मी हाउ इनसफिशियंट वर ऑल माई प्रिटेंशंस टू प्लीज अ वुमन वर्दी ऑफ बीइंग प्लीज्ड। और इस बार एलिजाबेथ हाँ कह देती है।
इन दोनों के अलावा भी कई अहम किरदार है। जेन और बिंगले हैं, उनकी प्रेम कहानी सीधी है, पर उसमें भी समाज का दबाव दिखता है। डार्सी और बिंगले की बहनें नहीं चाहती कि बिंगले जेन से शादी करे, क्योंकि बेनेट परिवार उनके स्तर का नहीं है।
और कुछ किरदार तो ऑस्टिन के व्यंग्य के शानदार उदाहरण है। मिस्टर कॉलिंस, बेनेट बहनों का वो दूर का कजन जो उनकी जायदाद का वारिस बनने वाला है।
हाँ, इतना चापलूस, इतना दम्भी कि हंसी आती है उस पर। जब एलिजाबेथ उसका शादी का प्रस्ताव ठुकरा देती है तो वो फौरन उसकी दोस्त शार्लेट लूकस से शादी कर लेता है।
शार्लेट का किरदार भी सोचने पर मजबूर करता है। वो एलिजाबेथ की तरह रोमांटिक नहीं है, प्रैक्टिकल है।
वो कॉलिन से इसलिए शादी करती है क्योंकि 27 साल की उम्र में बिना दहेज के यही उसकी आर्थिक सुरक्षा का जरिया है।
उसका फैसला उस वक्त की सच्चाई दिखाता है, महिलाओं के पास कितने कम विकल्प थे। ये एलिजाबेथ के प्यार और बराबरी वाले रिश्ते के आदर्श से बिल्कुल अलग है।
और एक और जबरदस्त किरदार, लेडी कैथरीन डी बर्ग, डार्सी की वो घमंडी चाची।
ओहो, वो तो एकदम क्लास और प्राइड का सिंबल है। वो एलिजाबेथ को धमकाने आती हैं कि तुम डार्सी से शादी मत करना, लेकिन उनका ये दखल देना उल्टा पड़ जाता है। असल में वो एलिजाबेथ और डार्सी को और करीब ला देता है। ये ऑस्टिन का तरीका है समाज की इन बेवकूफियों पर चोट करना।
तो कहानी इन्हीं किरदारों के रिश्तों, उनकी गलतफहमियां, उनके बदलने, इसी सबसे आगे बढ़ती है। डार्सी का खत, पेम्बरली जाना, लिडिया वाला स्कैंडल और डार्सी का चुपचाप मदद करना, ये सब बड़े टर्निंग पॉइंट्स हैं।
और आखिर में सारी बाहरी और अंदरूनी रुकावटों को पार करके पहले बिंगले जेन को प्रपोज करता है और फिर डार्सी एलिजाबेथ को।
और इस बार एलिजाबेथ खुशी खुशी हाँ कहती है। उपन्यास कांत दो शादियों से होता है। ये सिर्फ प्यार की जीत नहीं है, ये आत्म सुधार की, पूर्वाग्रहों पर काबू पाने की भी जीत है।
इस पूरी कहानी से कई गहरे विषय निकलते हैं। सबसे पहला तो नाम में ही है, गर्व और पूर्वाग्रह, प्राइड एंड प्रेजुडिस। डार्सी का गर्व, एलिजाबेथ का पूर्वाग्रह, ये कैसे रिश्तों को बिगाड़ते हैं।
हाँ, और उपन्यास यही दिखाता है कि खुश रहने के लिए इन कमियों को पहचानना और इनसे ऊपर उठना कितना जरूरी है। और ये सिर्फ डार्सी या एलिजाबेथ की बात नहीं, ये हम सबकी कहानी हो सकती है।
दूसरा बड़ा मुद्दा है प्यार और शादी का। ऑस्टिन सिर्फ रोमांस नहीं दिखा रही, वो उस समाज में शादी के मायने पर सवाल उठा रही हैं। वो कह रही हैं कि सिर्फ पैसे या सुरक्षा के लिए शादी करना, जैसे शार्लेट ने की, या सिर्फ आकर्षण में बहकर शादी करना, जैसे लिडिया ने की, ये असली खुशी नहीं देता।
वो एक आदर्श रखती हैं, ऐसा रिश्ता जो आपसी सम्मान पर टिका हो, जहाँ दिमागी तौर पर बराबरी हो और जहाँ सच्चा लगा हो, जैसा एलिजाबेथ और डार्सी का रिश्ता बनता है।
फिर वो क्लास और समाज का मुद्दा, वो तो हर जगह है। कैसे आपका जन्म, आपकी दौलत आपकी जगह तय करती थी।
नीचे है, अपनी अक्ल और अपने चरित्र के दम पर न सिर्फ उसका प्यार पाती है बल्कि उसका सम्मान भी। आखिर में कहानी यही कहती है कि इंसान का चरित्र उसके वर्ग से ज्यादा मायने रखता है।
और एक बात और, दिखावा और असलियत, पहली छाप कितनी भ्रामक हो सकती है। विघम कितना आकर्षक लगता है शुरू में, पर अंदर से कैसा निकलता है।
और डार्सी, जो शुरू में इतना रूखा और घमंडी लगता है, उसके अंदर कितनी ईमानदारी और अच्छाई छिपी होती है। ऑस्टिन बार बार याद दिलाती हैं कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं, गहराई में उतरना पड़ता है।
और हाँ, महिलाओं की स्थिति, उनकी इज्जत कितनी नाजुक डोर से बंधी थी, लिडिया वाले मामले से साफ पता चलता है। एक गलती और पूरे परिवार की बदनामी। उस माहौल में एलिजाबेथ का जो स्वतंत्र रवैया है, वो सच में काफी हिम्मत वाला था।
ऑस्टिन की लिखने की शैली भी कमाल है। उनका वो व्यंग्य, वो आयरनी, समाज की छोटी छोटी बातों पर, लोगों की कमजोरियों पर ऐसी चुटकी लेती हैं कि मजा आ जाता है।
और उनके डायलॉग्स, किरदारों की पर्सनैलिटी उनके बोलने के अंदाज से ही पता चल जाती है। एलिजाबेथ और डार्सी की वो नोकझोंक तो पढ़ने लायक है।
और वो जो तकनीक है फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स,
हाँ,
मतलब कहानी कोई और सुना रहा है पर हम सीधे किरदार के मन में झांक लेते हैं, जैसे एलिजाबेथ क्या सोच रही है, उसे कैसा लग रहा है, इससे हम किरदार से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं।
हाँ, हम एलिजाबेथ की नजरों से ही दुनिया देखते हैं, उसकी गलतियां भी करते हैं और उसके साथ साथ सीखते भी हैं।
सब मिलाकर देखें तो इस उपन्यास का असर बहुत गहरा है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये खुद को पहचानने की कहानी है, ये सीखने की कहानी है कि सच्चा प्यार मिलता नहीं है, उसे कमाना पड़ता है।
हाँ, अपनी कमियों को मानकर, बदलकर और दूसरे इंसान को सच में समझने की कोशिश करके।
इसमें एक उम्मीद है कि लोग बदल सकते हैं, समाज की दीवारें तोड़ी जा सकती हैं और आखिर में आपका चरित्र ही मायने रखता है।
अंत में एलिजाबेथ कहती है ना, मैं जेन से भी ज्यादा खुश हूँ। वो केवल मुस्कुराती है, मैं हंसती हूँ। आई एम हैप्पियर इवन देन जेन, शी ओनली स्माइल्स, आई लाफ। ये हंसी सिर्फ खुशी की नहीं है, ये एक गहरी संतुष्टि की हंसी है, एक समझदारी की और एक बराबर का साथी पाने की।
तो शायद ये कहानी हमें यही सिखाती है कि रिश्तों की नींव दिखावे पर नहीं बल्कि आपसी समझ, इज्जत और साथ मिलकर बेहतर बनने के सफर पर टिकी होती है।
और ये भी कि अपने पूर्वाग्रहों पर सवाल उठाना जरूरी है, पहली राय से आगे बढ़कर किसी को जानने की कोशिश करना, चाहे मुश्किल लगे, पर वो कोशिश हमेशा कीमती होती है। शायद इसीलिए 200 साल बाद भी ये कहानी हमें अपनी सी लगती है।
ये संवाद यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।